ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद लीलामृत टॉपिक है, एक मंदिर हो, प्रकरण 42, पृष्ठ संख्या 182। एक दाढ़ी वाला युवा पादरी जो सामाजिक कार्यों में सक्रिय था, प्रभुपाद से मिला और प्रभुपाद के उकसाने पर उसने मांसाहार और बाइबल के विषय में उनसे बहस छेड़ दी। बहस के बीच हंसदूत और प्रद्युम्न मांसाहार के विरुद्ध बाइबल से उक्तियां उद्धृत करते रहे। पादरी के चले जाने के बाद प्रभुपाद ने हंसदूत को अपने कमरे में बुलाया और कहा, यह बहुत अच्छा नहीं था हम बाइबल के आधार पर बोलते रहे, यह अच्छा होता कि हम गीता के आधार पर बोलते। हम उनसे समझौता का सहयोग प्राप्त करने के लिए परेशान क्यों हों, वे कभी भी आश्वस्त नहीं होंगे। पोप से मिलने से क्या लाभ होगा? प्रभुपाद ने कहा, मांसाहार की ओर जिनका झुकाव है वे बाइबल से कोई ना कोई उदाहरण खोज लेंगे, जैसे प्रलय के पश्चात नोहा का प्रतिज्ञा पत्र। उन्होंने कहा, हम ये भी नहीं जानते कि बूचड़ खाने में कैसी भयावह चीज़ें घटती रहती हैं, इन्हें कोई नहीं देखता। मैसेज मिलता है यहाँ से, क्या मैसेज निकलता है? कई बार हम पे संदेश आता है, मैसेज आता है, प्रभु जी वो एक इस्लाम के बारे में कुछ चर्चा करता है, उसको कन्विंस करना है, वो ऐसे ऐसे हमारे बारे में बोलते हैं। या कभी क्रिश्चियनिटी के बारे में आता है, हमारे बारे में ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे उद्धरण देते हैं। मेरे पास बहुत इंटरनेट पे मैसेज आते हैं, तो क्या जवाब दें उनका? व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने, उनको छेड़ो मत। जो बोलना है गीता के आधार पर बोलो, समझ आए ठीक है, नहीं समझ आए तो छोड़ दो। उनकी किताब पढ़ के उन्हें कन्विंस करने का प्रयास मत करो, अपनी किताब से, अपने ग्रंथ से उनको कन्विंस करने की कोशिश करो। समझ जाते हैं, मान जाते हैं ठीक है, नहीं मानते हैं तो भूल जाओ उनको, फॉरगेट। ज्यादा बहस करने से अपनी चेतना खराब होगी, अपनी बुद्धि खराब होगी, उसको बचा के रखो भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के प्रति अपने समर्पण के लिए। उनके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, कन्विंस करने की कोशिश जरूर करनी है, पर किसके आधार पर? गीता भागवतम के आधार पर। अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो फर्क है। फिर एक बात और कही कि हम ये भी नहीं जानते कि बूचड़ खाने में कैसी भयावह घटनाएं चीजें घटती हैं, इन्हें कोई नहीं देखता। अगर आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे ना, जब तक आपने स्लॉट और हाउस देखा नहीं है ना कैसा होता है, तब तक आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और हम लोग उसके पास से भी नहीं गुजरते, देखने की बात तो दूर है। नहीं, ऐसा करते हैं, एक पंजाबी बाग से टीम तैयार करते हैं भक्तों की, बस भर के उनको बूचड़ खाने ले जाते हैं दिखाने के लिए। सारे ब्रह्मचारी बूचड़ खाने में खड़े हैं देखने के लिए कि हमें कल मांसाहार के विरुद्ध लोगों को कन्विंस करना है। क्या सेंस है? शैल हुई? क्या हमें जाना चाहिए? क्या हमें जो है सबको एक ग्रुप बना के बूचड़ खाने के अंदर जो है घुसे चले जा रहे हैं देखने के लिए कि वहां कैसे काम होता है? इट्स नो यूज, कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सिर्फ एक बात की है कि हमारा गीता के अंदर ऐसा कमांड होना चाहिए कि हम उनको भगवद गीता के माध्यम से बातें समझा सकें। That should be the aim. अगले दिन प्रातः भ्रमण में प्रभुपाद पादरी से हुई बहस के बारे में बात करते रहे। उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर भी लोग हत्या करते हैं। भागवत में कहा गया है कि धर्म को इस तरह ठगने वाले लोगों को ठोकर मारकर निकाल दिया जाता है, केवल भगवान के आराधकों को ही शरण मिलती है। भक्त ने कहा, पिछली रात पादरी ने कहा था कि ईसा मसीह मांस खाते थे। प्रभुपाद कहते हैं, तो ईसा मसीह अपना ही खंडन करते थे, उन्होंने ही कहा है कि तू हत्या नहीं करेगा, दाऊ शैल नॉट किल। किसी को ईश्वर की नकल नहीं करनी चाहिए। भारत में हिप्पियों की तरह रहने वाले साधु गांजा पीते हैं, शिव का भक्त होने का दावा करते हैं। नहीं, हमें शक्तिशाली नियंताओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए, मीन्स देवताओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यहाँ कॉमन जब हम प्रचार करने निकलते हैं तो क्या डिस्कशन होती है, कृष्णा हैड सो मेनी फ्रेंड्स, इफ आई हैव वन और टू व्हाट इज द प्रॉब्लम, ऐसे ही बोलते हैं ना प्रभुजी। लोग सुना होगा, कहीं किसी ने कहा है नहीं कहा आप लोगों से, कितने लोगों ने बात सुनी है पब्लिक के मुंह से, पब्लिक के मुंह से कॉमन। अरे कृष्ण भी तो रास रचाया करते थे, हमने रचा ली तो क्या प्रॉब्लम है आपको, मीन्स तुम कृष्ण बनने की कोशिश कर रहे हो, यू थिंक दैट यू आर एंटाइटल्ड टू हैव रासा डांस। तो यहां जो है प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं कि हमें शक्तिशाली नियंताओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। शक्तिशाली नियंता मीन्स डेमीगॉड्स, देवता जिनको कि भगवान ने पावर्स सौंपी हुई है, हमें तो उनका भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो भगवान की तो बात ही कुछ और है, उनका अनुकरण होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। भगवान की जो लीलाएं हैं उनका अनुकरण करने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। हमें तो देवताओं की भी जो कार्यकलाप हैं उनको भी कॉपी नहीं करना चाहिए, उनका भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। उस पादरी ने यह भी कहा था कि बाइबल में ये नहीं कहा गया है कि तू हत्या नहीं करेगा, क्या बात है, वहां लिखा है कि तू वध नहीं करेगा। सी कैसे शब्दों को मरोड़ रहे हैं, कैसे उनको जो है ट्विस्ट कर रहे हैं। अतः मैंने उनसे कहा कि यदि मूल हिब्रू में वास्तव में तू वध नहीं करेगा है तो ईसा मसीह जरूर चतुर्थ या दसवीं श्रेणी के वधिकों को उपदेश दे रहे होंगे, और इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने उनका वध कर दिया। तो ऐसे लोग ईश्वर के विषय में क्या समझ सकते हैं। जब मैंने ऐसा कहा तो पादरी चुप हो गया, मैं उत्तर नहीं दे सका। एक दूसरा पादरी प्रभुपाद से मिलने आया और फिर वही प्रश्न उठ खड़ा हुआ। प्रभुपाद ने उससे पूछा तो आप हत्या के पक्ष में हैं, तो पादरी ने उत्तर दिया यह गिरा हुआ संसार है। प्रभुपाद ने कहा यह गिरा हुआ संसार है किंतु हमें गिरे हुओं के मध्य नहीं जीना है। पादरी ने नोहा के सौगंध पत्र का संदर्भ दिया। प्रभुपाद ने कहा संभव है कि नोहा ने उस समय इसकी अनुमति दे दी हो, वह समय प्रलय का था, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप हमेशा ऐसा करें। कठिन समय में जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी खाया जा सकता है। कठिन समय में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज यूज्ड इन वेरी 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 मीन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, जहां कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जहां कोई आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, वहां पे आप ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। मेरे पे बड़ा कठिन समय आया हुआ है, मैं एक शादी में आया हुआ हूँ, 2100 रुपया मैंने दक्षिणा दी है, मतलब शगुन डाला है, अब वो खर्चा कर दिया है, अब यहाँ कुछ खाऊं नहीं तो बात नहीं बनती ना, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा कोई स्कॉन डिवोटी तो नहीं है, यूँ देखा चारों तरफ, एक कठिन समय से बाहर निकले, फटाफट खा लिया, चुपके से खा के भाग लिए, देखा नहीं किसी ने। ये कठिन समय नहीं है, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टाइम। अब रेगिस्तान में हैं, किडनैप हो गए हैं, जंग, हमारे एक भक्त हैं मंडल प्रभु भाई, वृंदावन में सेटल्ड हैं, बड़े मंदिर में आते हैं संत नगर में, उनको नक्सलियों ने किडनैप कर लिया था, एंड ही इज इन ए जेल, नक्सलियों की जेल में है, उनके कैद में है, जहाँ उन्होंने किसी घर में जहाँ उन्होंने कब्जा कर रखा है, बिल्कुल रिमोट एरियाज में झारखंड के ना, वो कैद है, उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा, व्हाट विल ही डू, उसके पास क्या सब्स्टिट्यूट है कि जो नक्सली देंगे कमरे में जो थाली सरकाई जाएगी वही तो खाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर निकलने की, उसके पास बाहर जाने की कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर से खाना खाने की कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जो नक्सली खाना देंगे वही उसको खाना है। तो यहां पर जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं किंतु अब स्वस्थ रहने के लिए बूचड़ खाना के बिना कितनी ही वस्तुएं अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं गायों की रक्षा करो, वैश्यों का धर्म है। यद्यपि प्रभुपाद ईसाइयों से शीर्षवाद विवाद करते थे किंतु वे एकांत में स्वीकार करते थे कि उनसे तर्क करना व्यर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, किसी के ऊपर जो है जो समझने वाला नहीं है उसे आप क्यों तर्क कर रहे हैं, उसको छोड़ दो, वे कभी नहीं मानेंगे, हार कर भी नहीं। और ये बात आज की तारीख में ईसाइयों पे लागू नहीं होती, औरों पे भी लागू होती है। बहुत से ऐसे कल्ट हैं हमारे यहाँ हिंदुइज्म में भी, हिंदुओं में भी, जो कि आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। उनके पास अपनी बात को प्रूव करने के दसियों फैसिलिटीज़ हैं, दसियों एग्जाम्पल हैं, आपकी बात को नहीं सुनेंगे ना मानेंगे। आप ट्राई करके देखिएगा, समाज में निकल के देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं। पुरुष को नारायण बनाने को तैयार हैं, पत्नी स्त्री को लक्ष्मी बनाने को तैयार हैं, पर आपकी बात मानने को तैयार नहीं। तो यहाँ जो है प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जनता में प्रचार का सर्वोत्तम उपाय हरे कृष्ण कीर्तन था, जैसा कि रथ यात्रा उत्सव में हुआ था। कीर्तन करो, नर्तन करो, प्रसाद लो और हरेक को शामिल होने के लिए आमंत्रित करो। उन्होंने कहा, वे ईसाई पादरी तो अपने उपदेशों का भी पालन नहीं करते। एक लड़का मेरे पास आया और बोला, वह बात करना चाहता था और कहा कि मैं ईसाई हूँ। मैंने उत्तर दिया, तुम ईसाई नहीं हो तो हत्या नहीं करेगा। कलकत्ता से एक व्यक्ति प्रभुपाद से मिलने आया, किंतु जो ही उसने कृष्ण के बारे में कुछ कहना शुरू किया, प्रभुपाद ने उसे टोका, कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। हम अभी ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दूसरा जन्म भी होता है। वह व्यक्ति बोला, किंतु ईसाई कहते हैं कि दूसरा जीवन नहीं होता, वर्तमान जीवन के अंत में आप या तो स्वर्ग जाते हैं या नरक। प्रभुपाद ने कहा, यदि वे स्वर्ग जाने की बात करते हैं तो वह अगला जीवन है, किंतु कृष्ण का ज्ञान हजारों व्यक्तियों में से केवल किसी श्रेष्ठ पुरुष को ही होता है। श्रीमान कुमार नाम के एक व्यक्ति जो कभी कभी लंदन के मंदिर में रहते थे, प्रभुपाद के पास अनेक प्रश्न लेकर आए। उन्होंने कहा कि वे इस्कॉन के लिए कार्य करना चाहते हैं, किंतु उन्हें भारत में अपनी माँ को भेजने के लिए पैसे चाहिए थे। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, हमारे लोग 24 घंटे कार्य बिना एक पाई लिए करते हैं। श्रीमान कुमार ने इस्कॉन में सुधार लाने की भी बात करी। उन्होंने कहा, भक्तों को विद्वान बनने के लिए अधिक अध्ययन करना चाहिए, विशेषकर संस्कृत का। प्रभुपाद ने अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वह है समर्पण। तो संस्कृत चाहिए कि समर्पण चाहिए, क्या चाहिए? हमारे यहाँ हो चुका है, इफ पीपल रिमेंबर, एक डिवोटी लेक्चर देने आया करते थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ी और फिर संस्कृत पढ़ने के बाद जो प्रभुपाद की ट्रांसलेशंस हैं उन पर कमेंट करना शुरू कर दिया, ये शब्दार्थ गलत है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ ये गलती है, ये ट्रांसलेशन बनता है, वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने काफ़ी कुछ, और अपनी फिर भगवद्गीता छाप दी, अपनी भगवद्गीता छाप दी, प्रभुपाद की भगवद्गीता को कंडेम करके, भगवद्गीता एज इट इज़ को छोड़ के उन्होंने अपनी भगवद्गीता छाप दी। क्यों? संस्कृत के विद्वान हो गए। यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं कि हमको क्या चाहिए। हमें चाहिए समर्पण, सरेंडर। आगे लिखते हैं कि मैं कोई बड़ा संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, फिर भी मैं काम चला रहा हूं और विद्वान भी मानते हैं कि ठीक चल रहा है। ये प्रभुपाद के वर्ड्स हैं। सी व्हाट क्लियर फिलॉसफी ही हैड, एकदम स्पष्ट। कई बार हमसे लोग कहते हैं, प्रभु जी भगवत गीता समझ में नहीं आती। अच्छा पढ़ी, वो संस्कृति समझ में नहीं आती। अरे भाई, तू संस्कृत ना पढ़, हिंदी पढ़ ले, इंग्लिश पढ़ ले, फ्रेंच पढ़ ले, स्पेनिश पढ़ ले, मलयाली पढ़ ले, तमिल पढ़ ले, बंगाली पढ़ ले, उड़िया पढ़ ले। तो संस्कृत पढ़ने के चक्कर में क्यों आए? जो तेरी मातृभाषा है उसमें पढ़ ले, अनुवाद पढ़, तात्पर्य पढ़, आगे बढ़ जा। वो संस्कृत नहीं आती है इसलिए भगवद्गीता को पढ़ाई, कि मैं संस्कृत का तो विद्वान हूं नहीं, संस्कृत आती नहीं है इसलिए भगवद्गीता को कैसे पढ़ा जाए और क्यों पढ़ा जाए। यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं कोई बड़ा संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, फिर भी काम चला रहा हूं। 108 मंदिर बनाए आज, जो 550-600 के आसपास हैं, गोविंदा रेस्टोरेंट, फार्म हाउसेस, सेंटर्स, मेरा ख्याल दिल्ली में 200 सेंटर चल रहे हैं जहां प्रीचिंग होती है। तो ये सारा कार्य जो है, क्या सारे के सारे लेक्चर देने वाले, प्रीचिंग करने वाले संस्कृत के विद्वान हैं? सबने पहले का संस्कृत का जो है एमए पीएचडी करके एग्जाम पास किया है? कितने लोगों ने किया एमए संस्कृत में? कितने लोग हैं? प्रीचिंग करते हो प्रभु जी? करते हो ना? कितनी संस्कृत आती है? मुझे नहीं आती, हम किसी और की बात क्या करें। तो कहने का मतलब है प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं कोई बड़ा संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, फिर भी काम चला रहा हूं और विद्वान मानते हैं कि काम ठीक चल रहा। पब्लिक कमेंट जो है इंटेलिजेंट पीपल का, नॉलेजेबल पीपल का कमेंट क्या है कि इस कौन में काम बहुत बढ़िया चल रहा है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि हर व्यक्ति संस्कृत का विद्वान नहीं। मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज, अब एक और बढ़िया बात सुनिए, मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज मतलब गौर किशोर दास बाबा जी निरक्षर थे, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, निरक्षर मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, तो भी उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे। विद्वान होना या निरक्षर होना क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया है सिर्फ एक, वो है समर्पण, कि आपका गुरु के प्रति भगवान के प्रति कितना समर्पण है। लेकिन जब गौर किशोर बोलते थे तो वह विशुद्ध शास्त्र से बोलते थे, और हमारा सिद्धांत ये नहीं है कि कोई चीज सीखने में समय लगाएं, विशेषज्ञ बने और तब प्रचार करें, किंतु आप जो कुछ भी जानते हो उसका प्रचार कीजिए। प्रातः की कक्षा, सायंकालीन कक्षा, यदि वे मेरी पुस्तकें पढ़ते हैं तो वे पर्याप्त होगा, इट्स एनफ। आप लोग भक्ति वृक्ष करते हो, कितने लोग करते हैं, कितने लोग भक्ति वृक्ष करते हैं जो पढ़ाते हैं, मीन्स द टीच, सारे करते हैं। भक्ति वृक्ष के अंदर एक बड़ी स्पष्ट बात कही है कि छठी क्लास का बच्चा चौथी क्लास के बच्चे को पढ़ा सकता है, यू डोंट हैव टू बी एमए पीएचडी, इज इट ट्रू, लिखा है ना भक्ति वृक्षा मैनुअल के अंदर कि दसवीं का बच्चा आठवीं के बच्चे को पढ़ा सकता है। इट इज नॉट कि पहले मेरे को लेक्चर देने की परफेक्शन आ जाए, सारी भगवत गीता सारी भागवतम याद हो जाए, उसके बाद मैं कथा करूंगा। नो, यहां प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे बट सिंपल थिंग्स ही हैज सेड, क्या गाइडेंस दिया है कि प्रातः की कक्षा सायंकालीन कक्षा यदि मेरी पुस्तकें पढ़ते हैं तो वे पर्याप्त होगा, इट्स एनफ। आपको उसके लिए एक्सपर्ट बनने की, एमए पीएचडी करने की जरूरत नहीं। एंड भक्ति वृक्ष मैनुअल जिन्होंने पढ़ी है, जो भक्ति वृक्ष करते हैं, दे नो कि अभी वो चाहे 100% एक्सपर्ट ना हुए हो, फिर भी जो नियो फाइट्स हैं उसको ट्रेन करने के लिए, उनको समझाने के लिए उनके पास एनफ नॉलेज है कि उनको समझा सकते हैं, दे कैन टीच देम, एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग डन। अगर हम ये सोचें कि सारे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो यहां पर जो है आपको एक भी भक्ति वृक्ष नहीं मिलेगा, मिलेगा प्रभु जी, एक्सपर्ट ही नहीं होंगे। एक्सपर्ट होना कोई आसान काम है क्या? इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आइडिया इज कि यू आर मोर ट्रेंड, तो यू टीच द पीपल हु नॉट नो एनीथिंग, थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप दूसरों को देने को सक्षम है। तो छठी का बच्चा चौथी को पढ़ा सकता है, दसवीं का बच्चा आठवीं को पढ़ा सकता है, बारहवीं का बच्चा दसवीं को पढ़ा सकता है। इसीलिए आज की डेट में जो प्रभुपाद के वर्ड्स हैं इस संदर्भ में कितने एक्यूरेट हैं, कितने परफेक्ट हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 1997-98 में हमने जब भक्ति वृक्ष को स्टार्ट करने की कोशिश करी तो हम उसको नहीं चला पाए, क्योंकि जिनको हम भक्ति वृक्ष के अंदर कह रहे थे कि क्लास लो, ये सानू तो कुछ आंदे ही नहीं, मतलब हमें तो कुछ आते ही नहीं, हम तो ट्रेंड ही नहीं है। तो हम जो है पूरी वेस्ट दिल्ली में दो ही लोग थे, हमने कहा भी दो लोग हैं दो क्लास चला लेंगे, इससे ज़्यादा क्या होंगे। तो वो 15 में जो ब्रेक करना था या 20 में ब्रेक करना था वो 60-60 लोग हो गए, 70-70 लोग हो गए, ब्रेक आगे हो नहीं रहा क्योंकि दूसरा कोई क्लास लेने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रोग्राम फिजल आउट हो गया, वो नामहट में कन्वर्ट हो गया। भक्ति वृक्ष जो है वो नामहट बन गया, 100 आ जाए, 80 आ जाए, 90 आ जाए, जो आ जाए नामहट हो रहा है। ग्रेजुअली जब लोगों ने कंसेप्ट को समझा, प्रभुपाद को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, पढ़ा या उनको गाइडेंस मिली, तब जाके जो है उन्होंने सोचा यस मैं छोटी क्लास देने में सक्षम हूँ एंड आई शुड गो फॉर इट, एंड देन पीपल स्टार्टेड गोइंग फॉर इट। तो प्रभुपाद जी ने अपने जो है लेक्चर्स में अपने गाइडेंस में स्पष्ट कहा है कि आपको एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ जिसको बताना है उससे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। जिसको आप टीच करने जा रहे हैं, जिसको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको समझाने जा रहे हैं, उससे अधिक ज्ञान होना चाहिए तो आप उसको बता पाएंगे। आगे लिखते हैं, एक दिन भक्तगण प्रभुपाद के पास किसी समाचार पत्र की कतरन ले आए, जिसमें ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर डॉक्टर डी जेहरर ने किसी धार्मिक सम्मेलन में कहा था कि भगवान कृष्ण और उनकी भगवद गीता के उपदेश अनैतिक थे, अनकल्चर्ड, इलीगल, इलिसिट, नॉट एज पर शास्त्रास एंड लॉ। डॉक्टर जेनर ने कहा था कि एक विख्यात हत्यारा कदाचित भगवद गीता से प्रभावित हुआ था, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, अतः कोई भी हत्या कर सकता है। क्या उसने निचोड़ निकाला है कि आत्मा जो कि मरती नहीं है, जिसको मर्जी मार दो। कौन निकाल रहा है निष्कर्ष? अंग्रेज एक फिलोसोफर है। श्री प्रभुपाद प्रोफेसर के अज्ञान से निराश हुए और प्रातः भ्रमण के दौरान श्री प्रभुपाद ने अपने सचिव को तर्क लिखाए जिनका प्रयोग डॉक्टर जेहनर के पत्र में करना था। जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद से उनके शिष्यों की ही भांति विनीत भाव से मिला। प्रभुपाद और हैरिसन दोनों ने प्रसाद साथ साथ ग्रहण किया, जिसमें समोसे, हलवा, सब्जियां, श्रीखंड और पूरियां थी। पानी आया मुंह में? पर आज मिलेगा नहीं। आज एक अच्छी है। जब वे प्रसाद का आनंद ले रहे थे तो प्रभुपाद ने उल्लेख किया कि वृंदावन के कुछ पंडे बड़े खाऊ होते हैं। एक बार तो एक ने इतना खा लिया कि मैं मरने लगा, किंतु पुत्र को आश्वस्त किया कि इतना तो है कि मैं खाने से मर रहा हूं, भूख से नहीं मर रहा हूं। पंडा अपने पुत्र से कह रहा भूख से मरना अयशकर है, मतलब बदनामी होती है कि बंदा भूख से मर गया। अब जो है अधिक खाने से मरूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जार से बातें करते समय प्रभुपाद मुस्कुरा रहे थे और मैनोर के दान के लिए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा, क्या आपने मेरा कमरा देखा है? वह वास्तव में आपका मकान है, किंतु कमरा मेरा है। जार ने प्रतिरोध करते हुए शिष्य जैसे विनम्र समर ने कहा, नहीं, ये कृष्ण का घर है और कमरा आपका है। जॉर्ज हैरिसन ऑल्सो सरेंडर्ड। तब जॉर्ज ने प्रभुपाद से एकांत में कहा, कृष्ण भक्ति अंगीकार करने से उसके मित्र छूटते जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, चिंता मत करो। उन्होंने गीता से पढ़कर यह उद्धरण सुनाया कि कृष्ण कहते हैं, मुझे केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। जॉर्ज ने कहा, भविष्य में इस कान इतना विशाल हो जाएगा कि इसके कार्यकारी प्रबंध की आवश्यकता रहेगी। आज है परिक्रमा में कितने लोग गए थे? मायापुर कितने लोग थे टोटल परिक्रमा में? 7500 पीपल। 2000 हिंदी में, 1000 इंटरनेशनल में, 1000 रशियन में, 2000 बंगाली और 1500 बांग्लादेशी भक्त। 7500 पीपल मैनेज करना प्रभु जी आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है सबको मैनेज करना। पर जिन्होंने परिक्रमा का आनंद लिया है, दे कैन सी कि आज जो है कितना विशाल हो गया है इस्कॉन, कि कहाँ कहाँ से भक्त थैले सामान लेके पार्क में बैठे हुए हैं गदा भवन के सामने कि कभी कमरा मिलेगा। पता नहीं कब मिलेगा। पीपल आर वेटिंग। शहर में जाए ना, स्टेशन से उतरे, किसी को कमरा ना मिले ना तो वो बेचैन हो जाता है, ये कमरा नहीं मिला, कैसा मैनेजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट है। पर वहाँ पर जो है उन्होंने कितना पेशेंटली वेट किया है, कैसे कैसे भक्तों ने वहाँ पर जो है ट्रेवलिंग करी है, कैसे कैसे भक्तों ने वहाँ पर सेवा करी है, तो ये शो करता है कि इस्कॉन जो है आज की डेट में विशाल हो गया। विशालता का पता और किस चीज़ से लगता है? अदर थिंग्स, नंबर ऑफ टेम्पल्स, ऑपुलेंस ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल्स में ऑपुलेंस बरसती है, मतलब लगता है वाकई द्वारका है, सब ऑपुलेंस है हर जगह पे। नंबर 3, अभी पंजाबी बाग को कुछ इनाम मिला था पीछे, एक संतनगर को भी इनाम मिला था। क्या इनाम मिला था प्रभु जी? कितनी करी? टोटल दिल्ली में कितनी हुई, लेट्स टॉक ऑफ दिस, 7 लाख, एक महीने में 7 लाख गीता बांटना और वर्ल्ड में नंबर वन रहना लगातार कई सालों से, इसका इसका क्या मीनिंग है कि इस्कॉन जो है वो विशाल हो रहा है। कितना बुक छपती होंगी, कितनी किताबें छपती होंगी। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आज से कुछ साल पहले बाइबल वॉज नंबर वन इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर में आया करता था, बाइबल वॉज नंबर वन इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज जो है भगवद गीता इज नंबर वन इन प्रिंटिंग एंड नंबर वन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर वर्ल्ड। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये शो करता है कि इस्कॉन कितना विशाल है। देन मॉरिशस कितनी बड़ी कंट्री है, मॉरिशस जो है कितना बड़ा कंट्री है, एनीबडीज आइडिया? दिल्ली से छोटी है, दिल्ली का चौथाई भी नहीं होगा। और मैं 99 की बात बता रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी तो मुझे लेटेस्ट तो मुझे उनके जो है डाटास नहीं पता है, आई एम टॉकिंग ऑफ 99। जब हमने जो है भक्ति वृक्ष स्टार्ट करने की कोशिश करी थी तो हमने एक भक्ति शास्त्री की भी कोशिश करी थी, तो उसका जो कोर्स मटीरियल था मॉरिशस से लेके आए थे। 110 प्रीचिंग सेंटर चलते थे छोटी सी कंट्री में उस जमाने में। आज आप देखिएगा कि अगर आप, मैं तो लेक्चर देने जाता हूँ बहुत दूर दूर तक, मुझे पता है कि वहाँ कितने सेंटर्स हैं, छोटी छोटी सिटीज़ में सेंटर्स हैं, छोटे छोटे टाउन्स में सेंटर्स हैं। इस्कॉन जो है देखेंगे यार, तो जिसे कहते हैं ना, जैसे हम लोग एक साधारण भाषा में एग्जाम्पल देता हूँ कि आलू जो है पूरे संसार भर में हर जगह मिलता है, इस्कॉन के प्रीचिंग सेंटर्स भी पूरे संसार में हर जगह हैं। आप दिल्ली के आसपास कहीं चले जाइए, आपको मेरे पास इंटरनेट पे मैसेज आते हैं, प्रभु जी आई एम गोइंग टू KSA ईस्टर्न प्रोविंस, कोई अबू धाबी के आसपास कोई जगह है, ईस्टर्न प्रोविंस कहते हैं उसको, सऊदी के अंदर, मुझे वहाँ पर जो है कोई भक्त चाहिए संग करने के लिए। अब बोलो भैया कहाँ से ढूंढे हैं, वो है तरीका कि ईस्टर्न प्रोविंस, मुझे खुद नहीं पता ईस्टर्न प्रोविंस है कहाँ, पर मुझे नेट पे मैसेज आ रहा है, तो मैंने मैसेज को अपने ग्रुप में फ्लैश कर दिया, 7,000 लोगों पे मैसेज पहुँच गया, 3 मैसेज आ गए, प्रभु जी मेरा फ़ोन नंबर है, उनसे कहना जब वहाँ पे आए तो मेरे से कांटेक्ट कर लें, संग मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह जहाँ पहुँचो, जहाँ देखो, कहीं ना कहीं जो है संग मिल जाएगा। कि हमें इस्कॉन को देखें कितना विशाल हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी मुझे हस्तनापुर से मैसेज आया, प्रभु जी कथा करने आना है। मैंने कहा जी आप क्या करते हो वहाँ पर, कहता जी मैंने एक जुगाड़ बना रखा है डीजल का इंजन लगा के, और पीछे अपना बड़ा सा, जैसे वो मथुरा में उधर आसपास चलते हैं ना टेम्परेरी गाड़ियाँ, लकड़ी का फर्मा वर्मा लगा के, लकड़ी का प्लेटफॉर्म लगा के, तो मैं पर डीजल का खर्चा लेता हूँ और गांव गांव विलेज विलेज जाके हरी नाम करता हूँ, कुछ नहीं लेता उनसे, और बोलता हूँ भैया खिचड़ी खिला देना बस। कितने गाँव में वेस्टर्न यूपी में हस्तनापुर के आसपास प्रचार हो रहा है जिसको हम यहाँ बैठे जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, बट इस्कॉन कहीं भी जाओगे तो वहां पर आपको इस्कॉन के 2-4 भक्त तो दिखाई दे ही जाएंगे। इट इज सो वास्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां यही कहा जा रहा है कि इस्कॉन जो है वो कितना विशाल हो जाएगा, इसे कार्यकारी प्रबंध की आवश्यकता रहेगी। प्रभुपाद मैंने संसार को 12 मंडलों में विभाजित कर दिया है जिसके 12 प्रतिनिधि हैं, जब तक वे आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे तब तक कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। जाने से पूर्व जॉर्ज ने प्रभुपाद को विश्वास दिलाया कि मंदिरों की संख्या बढ़ाने में उनकी सहायता करेगा। बाद में प्रभुपाद ने टिप्पणी करते हुए कहा, जॉर्ज को कृष्ण से आंतरिक आशा मिल रही है। एक दिन एक पुराना परिचित व्यक्ति एलन गिंसबर्ग का टपका, वे डेनिम्स गैलिस और एक पुरानी कमीज पहने था, वह एक भारत निर्मित छोटा सा हारमोनियम लिए था। प्रभुपाद ने पूछा, तुम अभी भी हरे कृष्ण का जप कर रहे हो? एलन ने उत्तर दिया, हाँ मैं अभी भी हरे कृष्ण का जप करता हूँ, किंतु मैं दूसरी चीज़ों का भी स्वागत करता हूँ। एलन ने पूछा, क्या मेरा जप और हारमोनियम बजाना सुनना पसंद करेंगे? प्रभुपाद ने फिर हिलाकर उसका स्वागत किया। एलन ने हारमोनियम बजाते हुए ओम का जप आरंभ किया। उस हर बार ओम कहने में उसका स्वर गहरा होता जा रहा था, ओम ऐसे लिखा हुआ। जब समाप्त हुआ प्रभुपाद हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम जो कुछ जपना चाहो जप सकते हो, किंतु हरे कृष्ण का जप तो करो। ओम ओम को लंबा खींचे जा रहे हो। जब तक हरे कृष्ण का जप करते रहोगे बाकी सब कुछ ठीक है। तब प्रभुपाद ने अनेक भक्तों को एक महान आनंदप्रद कीर्तन में भाग लेने की अनुमति दी। जॉर्ज हैरिसन के माध्यम से एक अन्य सुप्रसिद्ध पाप गायक संगीतज्ञ डोनोवन हरे कृष्ण आंदोलन के महान नेता श्री प्रभुपाद के पास भेंट करने के लिए आया। डोनोवन के साथ उसके संगीतज्ञ मित्र और मिनी स्कर्ट पहने दो मित्र युवतियां थीं। वे प्रभुपाद के सम्मुख बेढंगे रंग से चुपचाप बैठ गए। प्रभुपाद ने कहा, वेदों में एक श्लोक है जिसका अर्थ है संगीत शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट रूप है। ये कहकर वे बताने लगे कि एक संगीतज्ञ किस प्रकार कृष्ण की सेवा कर सकता है। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हें अपने मित्र जॉर्ज का अनुकरण करना चाहिए। हम तुम्हें विषय वस्तु बताएंगे और तुम गीत लिखना। प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण की सेवा में कुछ भी, यहाँ तक कि धन भी लगाया जा सकता है। दोनों मन की युवती मित्र ने बीच में टोका कि धन तो भौतिक है। प्रभुपाद ने कहा, तुम कैसे जानती हो क्या भौतिक है और क्या आध्यात्मिक है। फिर वे दोनों मन की ओर मुड़े, क्या तुम जानते हो। दोनों मन ने नम्र भाव से कहा, मेरा दिमाग मोटा है लेकिन मैं प्रयत्न करता हूँ। फिर उसकी युवती मित्र ने उसके ऊपर झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाई। इस पर दोनों मन उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा अब हमें चलना चाहिए। प्रभुपाद ने आग्रह किया, कम से कम कुछ प्रसाद तो ग्रहण कर लो। जो ही अतिथि गए, प्रभुपाद उनके शिष्य हंसने लगे। प्रभुपाद ने कहा, वे सोच रही थी और उन्होंने शिष्यों को वाक्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। योगेश्वर बोला, हाँ वे सोच रही थी यदि कृष्ण उसे स्वीकार कर लेंगे तो वे उसे खो देंगे। प्रभुपाद ने अपने महत्वपूर्ण अतिथियों के समक्ष प्रवचन करना इतना पसंद था, वे जहाँ भी जाते थे ऐसा करते रहना चाहते थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को पत्र में लिखा, जहाँ भी मैं जाऊँ कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मुझसे बातें करने के लिए आमंत्रित करने की यह नीति पूरी तरह जारी रखनी चाहिए। मैनर में एक मास बीत गया, किंतु जन्माष्टमी तथा प्रतिमा स्थापना के लिए अभी कई सप्ताह शेष थे। अतः जब भगवान ने प्रभुपाद को पेरिस आकर राधा कृष्ण श्री विग्रहों को स्थापित करने को आमंत्रित किया तो प्रभुपाद ने उसको स्वीकार कर लिया। पेरिस 9 अगस्त सन 1973। भक्तों ने सिटी हॉल में प्रभुपाद के सरकारी अभिनंदन का प्रबंध किया था। पेरिस के मेयर और उनकी सरकार के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में प्रभुपाद ने कहा, यदि सरकारी नेता नागरिकों को प्रामाणिक ईश्वर भक्ति की शिक्षा नहीं देते तो वे उत्तरदायित्वपूर्ण नेता नहीं हैं। अगले दिन समाचार पत्र में संवाददाता ने इस भाषण को इस तरह छापा कि स्वामी ने नेपोलियन बोनापार्ट तक की आलोचना करी। से ट्विस्ट ऑफ वर्ड्स, मीडिया जो है कैसे वर्ड्स को ट्विस्ट कर लेता। भगवान, यहाँ भगवान कौन है, प्रभुपाद डिसाइपल है। पेरिस के चार रियू ले श्योर मंदिर में हमारा प्रवेश अभी हाल में ही हुआ था। हमने राधा कृष्ण के 48 इंच, कितने फुट हो गए, काफी बड़े हो गए ना 4 फुट के अर्च विग्रह प्राप्त कर लिए थे। प्रभुपाद प्रद्युम्न से मंत्रोच्चारण कराकर अर्च विग्रहों को पूजा सामग्रियां अर्पित कर रहे थे और स्वयं व्यास आसन पर बैठे बैठे निर्देश दे रहे थे। मैं सहायता कर रहा था। एक बार जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा प्रभुपाद ठीक मेरी बगल में खड़े हैं और वस्तुएं अपने हाथ में लेकर उन्हें श्रीमती राधा रानी के कमल जैसे मुख पर पोत रहे हैं। तब श्री विग्रह वेदी पर स्थापित हो चुके तो श्री प्रभुपाद ऊपर आए, उन्होंने आरती की और वस्तुएं दे देकर मैं उनकी सहायता करता रहा। स्थापना के बाद हम ऊपर श्री प्रभुपाद के कमरे में गए और उनसे आग्रह किया कि कृपा पूर्वक श्री विग्रहों का नामकरण करें। वे अपनी कुर्सी पर बैठ गए और बोले, पेरिस के विग्रह का नाम क्या है, श्री विग्रह का नाम है राधा पेरिसेश्वर, कृष्ण नहीं है, नया नाम दिया पेरिस के भगवान, राधा पेरिस ईश्वर। फिर वे कहने लगे, भारत के लोग शिक्षा के लिए इंग्लैंड और इंद्र तृप्ति के लिए पेरिस इसलिए आए हैं कि उन्हें कुछ युवतियां और कुछ फ्रांसीसी लड़कियां मिल जाएं, किंतु पेरिस की स्त्रियों के मुखमंडल सबसे सुंदर माने जाते हैं। रूपा ने कहा, राधा रानी इतनी सुंदर है जैसे पेरिस की कोई लड़की हो और कृष्ण इन सबसे सुंदर लड़की की खोज में आए हैं, अतः वह पेरिस ईश्वर है। अगस्त 15, प्रभुपाद लंदन वापस आए जहां उन्हें भारत की ताजा डाक मिली। हैदराबाद में इस्कान की जमीन के करारनामे के संबंध में कानूनी उलझन पैदा हो गई थी। प्रभुपाद ने अपने शिष्य महांस को लिखकर आग्रह किया कि बम्बई के मामले की तरह हैदराबाद के नए मामले में न फंसें। जब प्रभुपाद को समाचार भी मिला कि वृंदावन निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो उन्होंने लिखा, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम लोग वृंदावन मंदिर की योजना को पूरा करने में किस प्रकार लगे हो और अपने मस्तिष्क पर भार डाल रहे हो कि यह योजना कैसे पूरी हो। मैं कृष्ण से भी सदैव प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे इसे अच्छी तरह पूरा करने के लिए तुम लोगों को सद्बुद्धि दें। हवाई के एक शिष्य को लिखे पत्र में प्रभुपाद ने खेद प्रकट किया कि वे उसे पहले नहीं लिख सके। मैं बम्बई में जुहू की जमीन के बारे में, जो श्रीमान एन की थी, बहुत व्यस्त था। अब वह मरकर अपनी गति को प्राप्त हो गया है लैंड ओनर, लेकिन उसने हमारे लिए कितनी कठिनाइयां पैदा कर दी थी। अब भी कुछ कमी है, लेकिन मुझे आशा है कि उसे शीघ्र ही दूर कर लिया जाएगा। बम्बई में तमाल कृष्ण गोस्वामी को लिखते हुए प्रभुपाद ने वहाँ की कठिनाइयों के विषय में पहले जैसी चिंता व्यक्त की। यद्यपि भक्तों का भूमि पर अधिकार हो गया था और उन्होंने अपनी अस्थाई मंदिर वहाँ बना लिया था, किंतु उसे खरीदने के लिए कोई समझौता अभी दिखाई नहीं दे रहा था। यदि श्रीमती एन हमें भूमि नहीं बेच देती तो हमारा अगला कदम क्या होगा? हमने इसके विरुद्ध एक फौजदारी केस दर्ज कर रखा है कि उसने बलपूर्वक हमें जमीन से निकालने की कोशिश की। उस केस का क्या हुआ? मतलब यह है कि यदि वे जमीन की बिक्री हमारे हाथ नहीं करती और साथ ही हमारी धन क्षतिपूर्ति और ब्याज के साथ वापस नहीं करती, तो समय समय पर हमें जमीन से निकालने की कोशिश करती है। ऐसी हालत में हमें क्या कदम उठाने होंगे? इसने हमें इतना कष्ट दिया है और हमारे लिए इतनी कठिनाइयां पैदा करी। और प्रभुपाद ने मायापुर में अपने शिष्यों को लिखा, तो मायापुर का निर्माण कार्य मेरे वहां पहुंचने से पहले अच्छी तरह पूरा हो जाना चाहिए। जब मैं अगली बार वहां आऊं तो वहां ना तो कोई मजदूर होने चाहिए, ना खटखट करने वाले बढ़ई। मैं मायापुर में रहा होता, किंतु खटर खटर के कारण मुझे वहां से भागना पड़ा। वहां का कार्य पूरा हो जाए तभी मैं आ सकता हूं, अन्यथा नहीं। तो खटर खटर तो भी हो रही है, हो रही नहीं हो रही? कम से कम अभी 3 साल और चलेगी। बट कांट इमेजिन, जो बनने वाला है ना, उसको आप सोच नहीं सकते क्या बनेगा, सोच नहीं सकते। प्रभुपाद ने अमेरिका के दर्जनों पत्रों का भी उत्तर दिया, जहां उनके भक्त उनकी पुस्तकों के वितरण में अधिक गहरी रुचि लेने लगे थे। उनके पत्रों में गंभीर प्रश्न थे जिसका समाधान केवल प्रभुपाद ही कर सकते थे। पुस्तकों का वितरण कितना महत्वपूर्ण था? क्या भक्तजन अपना चोला छोड़ सकते थे और सामान्य पाश्चात्य वेशभूषा धारण कर सकते थे जिससे जनता में पुस्तकों के वितरण में अधिक सुविधा हो? क्या सड़कों में संकीर्तन करना पुस्तक वितरण से अधिक महत्वपूर्ण था? बस या ट्रक द्वारा देहात की यात्रा कैसी रहेगी? क्या वे ट्रकों में श्री विग्रहों के साथ जा सकते थे? भक्तों ने प्रभुपाद को लिखे अपने पत्रों में सामान्य रूप से अपने विचारों का उल्लेख किया, किंतु उन्हें प्रभुपाद से स्पष्ट उत्तर के सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा थी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन अब विशाल हो गया था। उसके विशाल तर और तर के ऊपर क्या होता है? तम। अब क्या होने वाला है? अभी तर ही चलेगा, विशालतम तो बहुत दूर है, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। फिर विशालतम से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, दैट इज द हाईएस्ट लिमिट, कभी आने वाली है नहीं। आज हाईएस्ट दिखाई दे रही है, कल और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा। और इस्कान के अंदर प्रभुपाद की इच्छा इतनी शक्तिशाली थी कि उनका केवल एक पत्र वर्षों के लिए नीति निर्धारण कर देता था। प्रभुपाद मैनोर के अपने कमरे में शांतिपूर्वक बैठे नित्य प्रति के अपने कार्यक्रमों जैसे स्नान करना, प्रसाद ग्रहण करना, संध्या को अभ्यागतों से मिलना आदि में लगे प्रतीत होते थे, किंतु साथ ही वे संसार भर के हजारों युवकों युवतियों को दिशा निर्देश देने और माया के विरुद्ध युद्ध में तत्पर करने का काम भी करते थे। मेरी पुस्तकों के वितरण के लिए पाश्चात्य वेशभूषा में जाने में कोई आपत्ति नहीं है, हमेशा अपना चोला धारण करना आवश्यक नहीं है, किंतु शिखा रखना और तिलक लगाना जरूरी है, जैसा तुमने लिखा है। सर पर नकली बालों की टोपी या हैट पहन सकते हो। कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए जो भी अनुकूल स्थिति हो वह हम स्वीकार कर सकते हैं। अपने सिद्धांत हमें नहीं भूलने वाले हैं, पुस्तकों का वितरण करने के लिए हम उनका अनुकूलन कर सकते हैं, किसी भी तरह पुस्तकों का वितरण करो, यदि तुम थोड़ी लोगों से थोड़ी देर कीर्तन करा सको, और तुम्हारा पहनावा क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्तों की ओर से इस स्पष्टीकरण के लिए प्रार्थना बार बार आती रही कि प्रभुपाद की पुस्तकों के बृहद वितरण के उद्देश्य की पूर्ति में बाह्य साधन को कहाँ तक न्यायोचित बताते हैं। प्रभुपाद में कोई भौतिक प्रेरणा नहीं थी, इसलिए उन्हें स्पष्ट दिखाई देता था कि कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए क्या करना चाहिए। तुमने जो सचल संकीर्तन दलकार पुस्तकों के विक्रय का प्रश्न उठाया है, तो हाँ हमें धन चाहिए। पुस्तकों का विक्रय ही वास्तविक प्रचार है, पुस्तकों से अच्छा कौन बोल सकता है। जो पुस्तकें खरीदेगा वह उन्हें कम से कम देखेगा तो सही, वास्तविक प्रचार पुस्तकों की बिक्री करना है। किसी को नाराज किए बिना ही पुस्तकों को बिक्री करने की तरकीब तुम्हें आनी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। तुम्हारे व्याख्यान से केवल 3 मिनट का प्रभाव होगा, किंतु यदि कोई पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ लेता है तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। एंड दिस इज अभी किया है माता जी ने बड़े मंदिर में, उसने जो है जैसे किसी को नेहरू प्लेस में गए प्रीच करने के लिए, तो उनको प्रीच नहीं किया, बोले एक दिए जरा प्रभुपाद का आधा पेज पढ़ लीजिए। उसने मार्क कर रखा है आधा पेज, एक पेज पढ़ा दिया और उसने फट किताब खरीद ली तुरंत, और खूब धड़ल्ले से प्रभुपाद के वर्ड्स को पढ़ा के किताब बेच रहे हैं मजे में। यही जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर कि यदि कोई पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ लेता है, एक पेज, तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन हम किसी को नाराज करना नहीं चाहते, यदि तुम्हारे आक्रामक व्यवहार से कुछ चिढ़कर चला जाता है तो ये हमारी मूर्खता और विफलता होगी। ना तो तुम पुस्तक बेच पाओगे, ना मैं तुम्हारे पास रुकेगा, किंतु यदि वे पुस्तक खरीद लेता है, यही सफल प्रचार है, मेरे गुरु महाराज का ही प्रमाण पत्र है। यदि कोई ब्रह्मचारी 1 पैसे की पत्रिका बेच लेता है, और कोई ब्रह्मचारी हमारी पत्रिका की कुछ प्रतियां बेच लेता है, तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते थे, कहते थे तुम कितने अच्छे हो। अतः साहित्य का वितरण हमारा असली प्रचार है, किंतु ये तुम इस मामले में ठीक से नहीं चल सकते तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारी सफलता इस बात से सिद्ध होगी कि तुमने कितनी पुस्तकें बेची। तुम जो भी चीज बेचना चाहो उसके लिए चर्चा द्वारा समर्थन जुटाना पड़ता है। इसी से कृष्ण की सेवा के लिए ग्राहक कुछ धन देता है, और उसका भी सौभाग्य है क्योंकि वह दिव्य ज्ञान के संबंध में कुछ पढ़ने का अवसर पाता है। लेकिन यदि तुम उसे चिढ़ा देते हो तो वह चला जाता है, यह तुम्हारी मूर्खता या कम बुद्धि होगी। भक्तों को दिए गए प्रभुपाद के निर्देश इतने महत्वपूर्ण होते थे कि उनसे प्राप्त कोई पत्र उतना ही प्रभावशाली होता था जितनी उनकी व्यक्तिगत भेंट। ऐसे पत्रों से वे संसार भर में अपने शिष्यों के जीवन और उनके मामलों की देखरेख करते थे। हर दिन दोपहर से पहले वे अपने सचिव को बुलाते और उससे आने वाले पत्रों को जोर से पढ़वाते और उनका उत्तर साधारणतया अविलंब लिखवा देते। वे प्राय कहा करते थे कि गुरु के शरीर या उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से वाणी अधिक महत्वपूर्ण है। कई लोग सवाल करते हैं लिविंग गुरु, यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि शरीर से अधिक आवश्यक है उसकी वाणी, वर्ड्स। अतः अपने पत्रों से वे सच्चे अनुयायियों के लिए कृष्ण भक्ति का मार्ग बनाते और उसे प्रशस्त करते रहते थे। अमेरिका में प्रभुपाद का प्रचार कार्य मुख्यतः उनकी पुस्तकों के वितरण के माध्यम से चल रहा था, जबकि भारत में मंदिरों की स्थापना से, तब भी दोनों विधियां उनके लिए एक जैसी थीं। यद्यपि उनके दृष्टि क्षेत्र में समस्त संसार था, फिर भी वे अपने आप को अपने गुरु महाराज का केवल विनीत सेवक कहते थे। उनका प्रयत्न सदैव अपने गुरु महाराज की सेवा करने का होता, चाहे वे मैनोर के लॉन में बैठे किसी छोटे बच्चे से छिड़खानी कर रहे हों या अपने किसी सहायक को प्रतिबुद्ध आत्माओं के अंचलों में हजारों लाखों पुस्तकों की वर्षा कर देने को कह रहे हों। श्रीमद् भागवत के तात्पर्यों के अगले वाक्यांश के संबंध में पूरे उत्साह और तन्मयता से विचार कर रहे हैं, अथवा बम्बई में चल रही श्रीमती एन के षड्यंत्र पर चिंता कर रहे हैं। हरे कृष्णा, यहीं विराम देते हैं। शिल्पपाद की